इशिका अभिमन्यु के साथ रेस कोर्स में आई हुई थी जहां हॉर्स राइडिंग होने वाली थी। वहां उन्हें राघव मिला। बातों ही बातों में राघव ने शाम को होने वाले डिनर के बारे में बताया जहां मिस्टर गौतम मित्तल इशिका को एक फोटो दिखाने वाले थे। अभिमन्यु चाहता था कि राघव उसे वो फोटो अभी दिखा दे, इसलिए अभिमन्यु और इशिका राघव के पास वापस आ रहे थे। राघव ने एक नज़र अपने मोबाइल में उस फोटो को देखा। इस तस्वीर में मैडम मर्चेंट थी जो काफी हद तक इशिका की तरह लगती थी। उसने गहरी सांस ली और अपने मोबाइल को वापस अंदर रखते हुए कहा, सो सॉरी मिस्टर राजवंश, चाहता तो ये फोटो आपको अभी दिखा सकता था, लेकिन मेरे डैड इसके अलावा मिस सिंघानिया से और भी कई बातें करना चाहते हैं। क्या आपको शाम को होने वाले डिनर से कोई प्रॉब्लम है? अभिमन्यु का बिहेवियर थोड़ा पॉजेसिव था और वो इशिका को लेकर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हो रहा था। राघव की बात सुनकर इशिका भी एक पल के लिए हैरान हो गई। अगर अभिमन्यु ने उसके लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश की तो वाकई उनके रिश्ते के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। इशिका हल्की घबराहट के साथ अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देख रही थी। तभी अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा, इसका फैसले लेने वाला मैं कौन होता हूँ? हाँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन ये बच्ची नहीं है जो एक छोटी सी डिनर पार्टी अटेंड करने के बारे में मुझसे पूछे। अभिमन्यु का जवाब सुनकर इशिका ने राहत की सांस ली। कम से कम वो एक छोटी सोच का आदमी नहीं था। उसके बाद अभिमन्यु ने आगे कहा, हमारे बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ते हैं, बाकी जो भी है उसे इतना गौर करने की या इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। मिस्टर मित्तल, मेरे लिए कुछ रिश्ते मायने नहीं रखते। राघव वहां खड़े हुए उन्हें देखता रह गया। अभिमन्यु इशिका का हाथ पकड़कर उस चेंबर में ले गया जहां घोड़े रखे गए थे। वहां एक से एक अच्छी नस्ल के घोड़े थे। इशिका उन्हें गौर से देख रही थी। अभिमन्यु उसे हाथ पकड़कर आगे एक प्राइवेट चेंबर में ले गया जहां उसका खुद का घोड़ा था। प्राइवेट चेंबर में आते ही अभिमन्यु ने सामने की तरफ इशारा करके कहा, वो मेरा हॉर्स है, उसका नाम मैंने चेजिंग विंड रखा है, काफी तेज है और साथ ही बहुत गुस्सैल भी। अभिमन्यु के कहते ही इशिका ने सामने घोड़े की तरफ देखा। वो एक अच्छी नस्ल का सफ़ेद घोड़ा था। घोड़ा दिखने में काफ़ी हैंडसम था, लेकिन उसे देखते ही इशिका चौंक गई थी। उसने एक नज़र अभिमन्यु की तरफ देखा और अपने मन में कहा, अच्छा, तो इस घोड़े को अभिमन्यु ने खरीदा था। मुझे आज भी याद है कि इसे ट्रेनिंग देने के लिए अस्तबल में लाया गया था। अब पता चल रहा है कि मैंने पैसों के लिए क्या क्या काम नहीं किया। इस घोड़े को काबू में करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी थी हम सबको। घोड़े ने भी इशिका को पहचान लिया था। उसने इशिका को देखकर सिर हिलाया। फिर अभिमन्यु उसके पास गया और उसे सहलाते हुए बोला, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ये बहुत अग्रेसिव है। क्या तुम इसके ऊपर बैठना चाहोगी? हम किसी और घोड़े को भी चुन सकते हैं, क्योंकि इस पर बैठना बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है। इशिका को उस घोड़े से क्यों डर लगता? आखिर उसने ही उसे ट्रेन किया था। उसने अपनी मुस्कुराहट को काबू किया और अभिमन्यु से कहा, तुम मेरे साथ हो तो फिर मुझे किस बात का डर है? मुझे पता है कि तुम मुझे संभाल लोगे। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। थोड़ी देर पहले राघव से मिलकर उसका मूड थोड़ा अपसेट हो गया था, लेकिन इशिका के शब्दों से वो अच्छा महसूस कर रहा था। इशिका आगे जाकर घोड़े के ऊपर बैठने लगी। तभी उसने महसूस किया कि अभिमन्यु ने अचानक उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे ऊपर उठाकर घोड़े पर बैठने में मदद की। अभिमन्यु ने इशिका से कहा, तुम्हारे लिए मैं इस घोड़े को चलाने जा रहा हूँ, आज इसका मूड अच्छा है तो ये ठीक से पेश आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ज्यादा तेज मत चलाना, क्योंकि मुझे डर है कि मैं गिर जाऊंगी, इशिका ने पलकें झुकाकर कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं गिरने दूंगा, अभिमन्यु ने जवाब दिया। अगर वो घोड़ा बोल सकता तो इस वक्त वो यही कहता कि इशिका अभिमन्यु के सामने मासूम बनने का दिखावा कर रही थी। उसे कब से चेजिंग विंड से डर लगने लगा था? वही उन्हें कोई देख रहा था। वो कोई और नहीं, अरमान सिंघानिया था, जो उम्र में लगभग 27 साल का था, हाइट 6 फीट के करीब, गहरी भूरी आंखें और हल्का गोरा रंग। उसकी नजरें इशिका और अभिमन्यु को ही देख रही थीं। वहीं इस बीच नक्श और आयशा अंदर पहुंचे। आयशा ने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, वो अरमान सिंघानिया है, हमारे दूर का रिश्तेदार है, लेकिन दिल्ली में वन ऑफ द फेमस और टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में आता है। हमें उसे इम्प्रेस करना होगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं हॉर्स राइडिंग में अच्छा नहीं हूँ। मुझे लगा कि तुम उसे इम्प्रेस करोगी, लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो, क्या कुछ और नहीं हो सकता? नक्श ने परेशान स्वर में पूछा। आयशा उसकी बात का कोई जवाब देती उससे पहले उसकी नज़र इशिका और अभिमन्यु पर गई। आयशा ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, हमारा पता नहीं, लेकिन लगता है किसी और की यहाँ बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है। नक्श को आयशा की बातों का मतलब समझ नहीं आया। उसने आयशा की नज़रों को फॉलो किया तो उसने देखा इशिका घोड़े से उतर रही थी और उसकी मदद करते हुए अभिमन्यु ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। उन्हें इतना करीब देखकर गुस्से से नक्श ने अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली थी। नक्श और आयशा अरमान के पास आ चुके थे। अरमान ने उनकी तरफ देखकर पूछा, वो तो अभिमन्यु राजवंश है ना, वो जो उसके पास में लड़की खड़ी है, क्या वो उसकी वाइफ है? समझ नहीं आ रहा अभिमन्यु अपनी वाइफ की घोड़े से उतरने में हेल्प क्यों कर रहा है, क्या उसे हॉर्स राइडिंग नहीं आती? आयशा तुरंत जवाब देते हुए बोली, वो मेरी छोटी बहन इशिका है, ज्यादा छोटी भी नहीं है, बस मेरा जन्म सुबह हुआ था और उसका शाम के वक्त। हाँ, आपने सही पहचाना, उसने कभी हॉर्स राइडिंग नहीं सीखी। हद है, अगर उसे हॉर्स राइडिंग नहीं आती है तो वो यहाँ क्या अपने पति के साथ रोमांस करने के लिए आई है? अरमान ने हल्के गुस्से में कहा। अपनी बात खत्म करके अरमान ने सामने की तरफ देखा तो इशिका और अभिमन्यु उनकी तरफ आ रहे थे। अरमान इशिका के चेहरे को गौर से देख रहा था। अचानक उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। अरमान ने मन ही मन कहा, इस लड़की की आंखें और फोरहेड मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? इसकी आंखें बिल्कुल केशव चाचू की तरह लग रही हैं। आंखों का रंग बिल्कुल ही सिमिलर है, जरूर कोई कोइंसिडेंस होगा। अरमान ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और फिर आयशा से बोला, मेरे चाचा ने बताया कि तुम्हारी मॉम उनकी फ्रेंड थी और उन्होंने तुम्हारे हालचाल जानने के लिए कहा है। क्या तुम लोग इतने गरीब हो गए हो कि तुम्हारे घर के बच्चे हॉर्स राइडिंग भी नहीं सीखते? आयशा ने मासूम बनते हुए अपनी आंखों को नम किया और चेहरा नीचे कर लिया। नक्श ने गहरी सांस ली और अरमान के सवाल का जवाब देते हुए कहा, एक्चुअली वो आयशा की सगी बहन नहीं है, मिस्टर सिंघानिया के किसी और के साथ भी रिलेशन थे और ये लड़की उनकी बेटी है। उनके घर पर जरूर रहती है लेकिन उन्होंने कभी उसे सारी सुख सुविधाएं नहीं दी। आदर्श के किसी और के साथ रिलेशन होने की बात सुनकर अरमान के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वो धीरे से बोला, चाचू जब राधिका आंटी के बारे में बात कर रहे थे तो काफी इमोशनल हो रहे थे, जिससे साफ है कि उनका रिश्ता खास है। उन्हें पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा कि राधिका सिंघानिया को मजबूरी में अपनी सौतन की बेटी को पालना पड़ रहा है। अरमान ने आयशा की तरफ देखकर सख्ती से कहा, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐरे गैरे लोग भी आते हैं। आयशा ने जवाब देते हुए कहा, फिलहाल उसका सिंघानिया फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है, वो यहाँ अभिमन्यु चाचू की पत्नी होने की हैसियत से आई है। क्या कहा तुमने, अभिमन्यु ने एक नाजायज लड़की से शादी की है? अरमान ने हैरानी से पूछा। आयशा ने जवाब में हाँ में सिर हिला दिया। इसी के साथ अरमान के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने नक्श से कहा, ग्रेट, फिर तो उससे बातचीत करना बनता है। तुम जानते हो कि हम दोनों क्लासमेट रह चुके हैं और मैं चाहता था कि वो मेरी किसी बहन से शादी करे, लेकिन देखो उसने शादी की तो एक नाजायज लड़की से। उस घमंडी लड़के ने मेरी बहन से शादी करने से साफ मना कर दिया था।
अरमान अपने चेहरे पर घमंड भरी मुस्कुराहट लिए इशिका और अभिमन्यु के पास गया। उनके पीछे नक्श और आयशा भी थे। अभिमन्यु ने अरमान को देखकर मुंह बनाया, जबकि अरमान ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, मेरी कजिन को रिजेक्ट करने के बाद तुमने इस लड़की से शादी की है जिसे हॉर्स राइडिंग तक नहीं आती? अभी अभी सुना है कि ये किसी की नाजायज बेटी तक है। अभिमन्यु ने अरमान की तरफ देखकर भौहें उठाकर कहा, अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ अच्छा नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो, किसी को तुम्हारे ओपिनियन से सर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों की बातचीत करने के तरीके से इशिका समझ गई थी कि उनका रिश्ता अच्छा नहीं था। अरमान इशिका के पास आया और उसे ऊपर से नीचे घूर कर देखते हुए कहा, देखने में काफी खूबसूरत है लेकिन कोई क्लास नहीं है। अभिमन्यु को अरमान की बातें उकसा रही थीं। जब वे साथ पढ़ते थे तब अरमान उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन अभिमन्यु ने उससे एक दूरी बनाई रखी। इतना सब कुछ होने के बावजूद अरमान ने कभी अभिमन्यु से इस तरह बातें नहीं की थीं, जबकि आज वो उसकी इंसल्ट कर रहा था। मैं अभी कह रहा हूँ, सोच समझ कर बात करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो बात मुझ तक रखो, मेरी पत्नी तक मत आओ, अभिमन्यु ने चिढ़ते हुए कहा। अरमान ने अभिमन्यु की तरफ देखा और हल्का मुस्कुराकर कहा, तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं इसकी रिस्पेक्ट भी कर लूंगा, लेकिन पहले इसे मेरी नज़रों में अपनी इज्जत कमानी होगी। क्यों ना एक रेस हो जाए मेरे और तुम्हारी पत्नी के बीच में? उसे हॉर्स राइडिंग नहीं आती है, अगर तुम्हें रेस करनी है तो तुम मेरे साथ कर सकते हो, अभिमन्यु ने जवाब दिया। अभिमन्यु की बात सुनते ही अरमान जोर जोर से हंसने लगा। उसका साथ देते हुए उसके आसपास खड़े और लोग भी हंस रहे थे। अरमान ने अभिमन्यु को फिर से उकसाते हुए कहा, मैंने सुना है कि ये मिस सिंघानिया के बचपन में उनके घोड़े की लगाम पकड़कर दौड़ा करती थी, इसको कहो ना कि मेरे लिए भी ऐसा करे, फिर शायद मैं इसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर सकता हूँ। अभिमन्यु इशिका का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सीधा अरमान के मुंह पर एक मुक्का मारने जा रहा था, तभी इशिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और अरमान की आंखों में देखते हुए सख्ती से कहा, ठीक है फिर एक छोटी सी रेस हो ही जाए। इशिका ने तो हाँ कह दी थी, लेकिन अभिमन्यु उसे ये बेवकूफ़ी नहीं करने देने वाला था। वो जल्दी से बोला, बिल्कुल नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरमान का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। वो जानता था कि अगर वो सबके सामने उसे उकसाएगा तो इशिका हाँ कह ही देगी। अभिमन्यु इशिका को समझा रहा था तो अरमान जल्दी से बोला, अरे तुम इसे मना क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी पत्नी पर ज़रा भी भरोसा नहीं है? ये एक छोटी सी रेस होगी जिसमें हार जीत मायने नहीं रखेगी। अभिमन्यु ने गुस्से में अरमान की तरफ देखते हुए कहा, इसे हॉर्स राइडिंग नहीं आती है और तुम जानते हो कि जिसको घुड़सवारी नहीं आती है उसके लिए ये एक छोटी सी रेस भी जान का सौदा बन सकती है। अगर तुम्हें इसके चोट लगने का इतना ही डर है तो फिर इसे घर पर ही सजा कर रखना था ना, यहाँ लेकर आने की क्या ज़रूरत थी अभिमन्यु राजवंश? अरमान ने जवाब दिया, हालांकि वो भी नहीं चाहता था कि वहाँ किसी को किसी भी तरह की चोट लगे। अरमान जिस तरह से अभिमन्यु और इशिका को चैलेंज कर रहा था, ये देखकर नक्श और आयशा के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। आज अगर इशिका की थोड़ी सी भी इंसल्ट होती तो पक्का प्रशांत अभिमन्यु को फिर से फोर्स करते कि वो इशिका को तलाक दे दे। रेस तो होकर रहेगी, अरमान ने कहा। फिर इधर उधर देखा तो उसकी नज़र अभिमन्यु के घोड़े पर गई। अरमान की आंखों में चमक आ गई थी, वो भी उसकी कीमत समझता था। कुछ सोचते हुए अरमान ने अभिमन्यु से कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि यहाँ किसी तरह की रेस ना हो तो उस घोड़े को मुझे बेच दो, जितने पैसे तुम कहोगे उससे ज्यादा ही दूंगा। वो बेचने के लिए नहीं है अरमान, और ये बात तुम अच्छे से जानते हो, अभिमन्यु ने जवाब दिया। कम ऑन, तुम उसका यूज तक नहीं करते हो और उसे सजा कर रखते हो। तुम अच्छे से जानते हो इसकी क्या कीमत है। इसे जब यहाँ लाया गया था तब ये घोड़ा इतना एग्रेसिव था कि इसने काफी लोगों की जान ले ली थी। इसे इतनी मुश्किल से ट्रेन किया गया सिर्फ यहाँ रखने के लिए तो नहीं, अरमान ने कहा। वो हर हाल में घोड़ा पाना चाहता था। अरमान की बात सुनकर एक आदमी बोला, हाँ मैंने भी सुना था कि एक औरत थी जिसने इसे काबू में करना सीखा था और उसके बाद इसे पालतू रहना सिखाया गया। उन लोगों को पता तक नहीं था कि वो यहाँ इशिका की बात कर रहे हैं। अरमान अपनी बात खत्म करके घोड़े की तरफ बढ़ने लगा और उतने में किसी और ने घोड़े को छुआ तो वो गुस्सा हो गया और कूदकर उसकी तरफ आने लगा। भीड़ जल्दी से हटने लगी और उसका ध्यान रखने वाले ट्रेनर को बुलाया गया, लेकिन इसी बीच किसी ने इशिका को धक्का दे दिया था और वो ठीक घोड़े के सामने जा गिरी थी।